ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन COP26 में शरीक होकर कल लौटेंगे स्वदेश। गृहमंत्री बालकृष्ण खान ने रिडेलधुरा, पझांग और बैतड़ी के बाढ़, भूस्खलन और डुबान से दुष्प्रभावित क्षेत्रों का किया स्थलगत निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित जिलों को आपदाग्रस्त जिला घोषणा करने की गृहमंत्री खान ने जताई प्रतिबद्धता। चीन ने 16 लाख कोरोना वैक्सीन का डोज नेपाल को किया हस्तांतरित और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में एक बस हादसे में 22 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन COP26 में शरीक होकर कल स्वदेश लौटेंगे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित सम्मेलन में शरीक होकर प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा सहित का प्रतिनिधिमंडल आज ही वहां से नेपाल के लिए रवाना हुआ है। ये जानकारी हमारे प्रतिनिधि अजय पम ने दी। प्रधानमंत्री देउवा कल सुबह काठमांडू पहुंचेंगे। स्कॉटलैंड दौरे के दरमियान प्रधानमंत्री देउवा सम्मेलन के अतिरिक्त विभिन्न बैठकों के साथ ही विभिन्न भेंटवार्ताओं में भी शरीक हुए थे। प्रधानमंत्री देउवा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भी सहभागी हुए थे। इससे पूर्व उन्होंने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वेन वालेस से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान उनके बीच गोरखा सैनिकों की समस्या लगायत विषयों में विचार विमर्श हुआ था। इसी तरह प्रधानमंत्री देउवा के साथ विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक मैरी पांगेटू, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी की उप कार्यकारी निदेशक एलेक्सिया लाटोड ने भी भेंटवार्ता की। भेंटवार्ता के क्रम में उनके बीच समसामयिक विषयों में विचार विमर्श हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के महासचिव किटैक लिम ने भी प्रधानमंत्री देउवा के साथ शिष्टाचार भेंट की थी। उनके बीच समुद्री क्षेत्र में नेपालियों के लिए नया अवसर प्रदान करने के विषय में बातचीत हुई थी। राष्ट्रसंघीय COP26 शिखर सम्मेलन के पहले दिन 1 नवंबर को प्रधानमंत्री देउवा ने नेपाल की ओर से सम्मेलन को संबोधित किया था। 21 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री देउवा बीते रविवार को स्कॉटलैंड के लिए प्रस्थान किया था। गृहमंत्री बालकृष्ण खान ने सुदूर पश्चिम के रिडेलधुरा, पझांग और बैतड़ी जिलों में बाढ़, भूस्खलन और डुबान से दुष्प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री का भी कार्यभार संभाल रहे गृहमंत्री खान ने प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय लोगों से क्षति के बारे में जानकारी भी इकट्ठी की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के विदेश से लौटने पर हालिया बेमौसमी आपदा से दुष्प्रभावित जिलों को आपदाग्रस्त जिला घोषित करने की भी प्रतिबद्धता जताई। नेकपा एमाले ने कहा है कि वो अपने राष्ट्रीय महाधिवेशन के जरिए कम्युनिस्ट आंदोलन को एकताबद्ध करेगी। आज नेकपा एमाले के केंद्रीय प्रचार विभाग द्वारा बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराय ने बताया कि लोकतांत्रिक राजनीतिक स्थायित्व के लिए ताजा जनादेश का विकल्प नहीं है और इस विषय में महाधिवेशन को ठोस धारणा बनानी होगी। उन्होंने कहा कि महाधिवेशन में नेतृत्व निर्वाचन का मतदान इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए होगी। बता दें कि एमाले का 10वां महाधिवेशन मार्गशीर्ष 10 से 12 अगस्त तक चितवन में होगा। नेपालियों के दूसरे बड़े पर्व यमपंचक अंतर्गत आज दूसरे दिन कुत्ते और कौवे की पूजा की गई। आज ही त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों ही तिथियां पड़ने के कारण काग और कुकुर तिहार एक ही दिन मनाया गया। नेपाल पुलिस ने अपराध अनुसंधान में उत्कृष्ट काम करने वाले कुत्ते को पुरस्कृत किया। यमपंचक के दूसरे दिन कुकुर तिहार के अवसर पर नेपाल पुलिस की K9 महाशाखा महाराजगंज में आज आयोजित कार्यक्रम में महाशाखा की प्रमुख SSP डॉ देवती गुरुंग ने कुत्ते की पूजा कर पुरस्कृत किया था। चीन ने नेपाल को कोरोना वैक्सीन का 16 लाख डोज उपलब्ध कराया है। आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विनोद खतिवड़ा को नेपाल के लिए चीन की राजदूत हो यांची ने वीरोसिल वैक्सीन हस्तांतरित की। मौके पर मंत्री खतिवड़ा ने COVID-19 महामारी के शुरुआती दौरे से अब तक कोरोना से जूझने के लिए नेपाल को उपलब्ध कराई गई स्वास्थ्य सामग्रियों के लिए चीन सरकार को धन्यवाद दिया। नेपाल के लिए चीनी राजदूत हो यांची ने कहा कि चीन सरकार द्वारा नेपाल को उपलब्ध कराई गई कोरोना वैक्सीन से नेपाल के टीकाकरण अभियान को मदद मिलेगी। इसी बीच नेपाल को वैक्सीन के 30 लाख अतिरिक्त डोज मुहैया कराने के विषय में भी उनके बीच बातचीत हुई थी। चीन से अब तक 1,59,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज नेपाल लाए जा चुके हैं और अब सिर्फ 34 लाख डोज अनुदान उपलब्ध होना बाकी है। ये जानकारी स्वास्थ्य सचिव डॉ रोशन पोखरेल ने दी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हेलो,
के गर्दैछौ?
हाम्रो बिहेको सपिङको लागि आएको नि बाबा मम्मीसँग।
ए हो र, अनि मेरो लागि के किन्दैछौ?
बाबा मम्मी यति हुनुहुन्छ के सोच्नुहुन्छ होला उहाँले। मलाई त कस्तो लाज लाग्छ, भरे राति बोलौँ न ल।
अहिले फ्री वाइफाई छ क्या अफिसमा, बुझ न, भरे कसरी गर्नु?
मेरो हुनेवाला श्रीमानज्यूलाई यति पनि थाहा छैन कि क्या हो? एनटिसीको अनलिमिटेड नाइट भोइस प्याक, राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म।
ए हो त है, मेरो वाइफ त कति स्मार्ट। अब त रात
अब रात तपाईँको नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। आज देशभर में कोरोना के 447 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 439 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। वहीं आज 7 संक्रमितों की मौत हो गई। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक आज देशभर में 97,070 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगाई। सरकार ने कोविड-19 के कारण बेरोजगार हो चुके व्यक्तियों के परिवारों को राहत के रूप में प्रति परिवार 10,000 रूपये मुहैया कराने के लिए तैयार की गई कार्यविधि को आगे बढ़ाया है। बता दें कि कोविड-19 की महामारी से दुष्प्रभावित अति विपन्न परिवार को नकद हस्तांतरण कार्यविधि 2078 को कार्तिक पहले हफ्ते की मंत्रिपरिषद बैठक ने ही स्वीकृत किया था। स्वीकृत कार्यविधि अर्थ मंत्रालय द्वारा गत सोमवार को राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के बाद क्रियान्वयन का रास्ता साफ हुआ है। सरकार ने 753 स्थानीय तहों के 5,00,000 परिवारों को 10,000 की दर से वितरण करने के लिए 5 अरब बजट आवंटित किया है। वरिष्ठ मानवाधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधर की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर पद्मरत्न तुलाधर स्मृति राष्ट्रीय प्रतिष्ठान का गठन किया गया है। प्रतिष्ठान के अध्यक्ष पद पर सभामुख तमननाथ ढोंगाना, संरक्षक के पद पर चनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष पद पर डॉ चुंद्रा वज्राचार्य, महासचिव पद पर डॉ ओम गुरुंग, सचिव के पद पर पासांग शेरपा और कोषाध्यक्ष के पद पर सुमनिमा तुलाधर को चुना गया है। इसकी घोषणा काठमांडू महानगरपालिका द्वारा स्थापित तुलाधर की प्रतिमा का माल्यार्पण करते हुए काठमांडू महानगरपालिका के मेयर विद्या सुंदर शाक्य ने की। कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने पद्मरत्न तुलाधर को राष्ट्रीय नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा ही देश को अग्रपंक्ति में रखते हुए स्वयं से अधिक महत्व देश को दिया था। परसा की वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 16 शंकराचार्य गेट से पुलिस ने बिना स्रोत के 5,50,000 रूपये सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। भारत से नेपाल आ रही मोटरसाइकिल की जांच करने के दौरान पुलिस ने स्थानीय वीरगंज वार्ड नंबर 31 कोनिया टोल के अनिल साह को गिरफ्तार कर आज सार्वजनिक किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आज एक बस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सुधनोती जिले में हुआ। बस सुधनोती की बलूच क्षेत्र से पंजाब के रावलपिंडी जा रही थी। बता दें कि बस 500 मीटर गहरी खाई में गिरी थी। पाकिस्तानी समाचार पत्र डॉन के अनुसार बस में तकनीकी खराबी आ गई थी। मृतकों में महिलाएं व बच्चे शामिल हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन COP26 में शरीक होकर कल लौटेंगे स्वदेश। गृहमंत्री बालकृष्ण खांड ने डडेलधुरा, बझांग और बैतड़ी के बाढ़, भूस्खलन और डुबान से दुष्प्रभावित क्षेत्र का किया स्थलगत निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित जिलों को आपदाग्रस्त जिला घोषणा करने की गृहमंत्री खांड ने जताई प्रतिबद्धता। चीन ने 16,00,000 कोरोना वैक्सीन को डोज नेपाल को किया हस्तांतरित। और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में एक बस हादसे में 22 लोगों की हुई मौत। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभ रात्रि।